आदित्य जब ऑस्ट्रेलिया गया तब उसे बहुत काम था। उसकी माना से बात नहीं हो सकी। ऑस्ट्रेलिया और भारत के समय के अंतर के कारण वे दोनों बात नहीं कर पाए। आदित्य को माना का कोई फोन भी नहीं आया। आदित्य को लगा कि शायद वो अपने माता पिता के साथ व्यस्त होगी। अपना काम खत्म करने के बाद आदित्य रात को देर से अपने कमरे में गया और बहुत थका हुआ था, इसलिए वो सुबह देर से उठा। उसकी कोई प्रातःकालीन मीटिंग नहीं थी। वो सो ही रहा था कि उसका फोन बजने लगा। उसने फोन नहीं उठाया। दूसरी बार फिर फोन आया। उसने मन मारकर आंखें खोलीं और देखा तो अधिराज का फोन था। उसके उठाने से पहले ही फोन कट गया। उसने फोन रख दिया। तीसरी बार फिर फोन आने लगा। ये सुबह सुबह अधिराज को क्या हो गया है? जरूर कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आई होगी, ये नहीं कि खुद हैंडल कर ले। वो अपने मन में अधिराज को कोसते हुए फोन उठाया। आगे से अधिराज बोला, भाई आप सो रहे थे क्या? ये कोई पूछने वाला सवाल है? ऑस्ट्रेलिया का टाइम देखो, ये सोने का ही टाइम है। आदित्य को गुस्सा आने लगा। अधिराज चुप हो गया, वो नहीं बोला। अब चुप क्यों हो, बोलो मुझे किस लिए फोन किया? भाई आपकी माना भाभी से तो बात नहीं हुई? नहीं, मैं रात को देर से आया, बहुत थका हुआ था, उसका भी फोन नहीं आया। मगर प्लीज काम बोलो, तुमने मुझे किस लिए फोन किया? अब मेरी माना से बात हुई या नहीं ये पूछने के लिए तो तुमने फोन नहीं किया होगा। आदित्य उस पर फिर गुस्सा हो रहा था। भाई यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, आप पहली फ्लाइट पकड़कर भारत वापस आ जाओ। ऐसा क्या हो गया, अब बताओ तो सही। नहीं भाई, मैं आपको फोन पर नहीं बता सकता, आप जल्द से जल्द वापस आ जाओ। समझ लो कि जिंदगी और मौत का सवाल है, अधिराज ने कहा और फोन काट दिया। आदित्य को उस पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि अधिराज ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। उसके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। माँ बाप बीमार हो गए होंगे, जाननिशा की कोई प्रॉब्लम है, कम से कम मुझे बता तो देना चाहिए था। उसने अपने फोन पर टिकट की बुकिंग की और जाने के लिए तैयार होने लगा। तैयार होकर उसने देखा तो अभी फ्लाइट में समय था। उसने माना को फोन मिला दिया, उसी से पूछता हूँ कि क्या हुआ। मगर माना का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने फिर फोन मिलाया, माना का फोन फिर स्विच ऑफ था। फिर उसने मेहर का फोन ट्राई किया, मेहर का फोन भी बंद था। उसे घबराहट होने लगी। उसने महेश खन्ना जी का फोन मिलाने की कोशिश की मगर उनका फोन भी बंद था। उसके बाद उसने मनाल की माँ दीपा जी का फोन ट्राई किया मगर वो भी बंद था। आदित्य को बहुत घबराहट होने लगी। वो जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट के लिए निकल गया। वो समझ रहा था कि जरूर कोई खन्ना फैमिली पर मुसीबत आई है। उसने बड़ी मुश्किल से भारत से ऑस्ट्रेलिया का सफर काटा। उसे ऐसा लगा कि उसकी जान निकल जाएगी। एयरपोर्ट से बाहर आते ही आदित्य ने अधिराज को फोन किया। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैं भारत पहुंच चुका हूँ, अब तो तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ। भाई आप सीधा शहर के बाहर नदी पर पुल है, उस पर आ जाओ। क्यों, वहां किस लिए? एक बार आप आ जाओ, मैं फिर बताता हूँ आपको। आदित्य टैक्सी लेकर सीधा नदी के ऊपर बने पुल की तरफ निकल गया। वहां पर जाते हुए उसके मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे बाहर क्यों बुला रहा है। नदी की तरफ जाते हुए उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना निशा को फोन किया जाए। अगर मेहर जान या उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम आई होगी तो निशा को पता होगा। उसने निशा का नंबर लगाया मगर निशा का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। उसे निशा का फोन बंद होने से वो और भी घबरा गया क्योंकि जो लोग उसे सबसे प्यारे थे, मनाल और निशा, उन दोनों के नंबर ही बंद थे। जब आदित्य वहां पुल पर पहुंचा तो पुल और उसके आसपास नदी के किनारों पर काफी भीड़ थी। वहां पर पुलिस के साथ साथ गोताखोर भी थे जो नदी में कुछ ढूंढ रहे थे। वहां पर जाते ही आदित्य बोला, यहां पर क्या हुआ है? पुलिस भी यहां पर है। अधिराज तुम यहां क्या कर रहे हो और तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है? उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था, वो बहुत कंफ्यूज हो रहा था। भाई, अधिराज बड़ी मुश्किल से बोला, आगे भी बोलो, क्या हुआ, तुम यहां क्या कर रहे हो? जिस दिन आप भाभी को उनके माँ बाप के पास छोड़कर गए थे उसी दिन शाम को उनका एक्सीडेंट हो गया। तो क्या मनाल अस्पताल में है? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी हॉस्पिटल चलो। नहीं भाई, भाभी हॉस्पिटल में नहीं है। भाभी और उनकी सारी फैमिली गाड़ी से कहीं जा रहे थे, वे लोग और उनकी गाड़ी नदी में गिर गई। हमें भी अगले दिन पता चला, गाड़ी तो उनकी मिल गई मगर अभी तक उन चारों का कुछ पता नहीं चला, उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। मैंने आसपास का सारा इलाका चेक कर लिया है, गोताखोर लगे हुए हैं अगर कोई लाश मिल जाए। अधिराज की बात सुनकर आदित्य कहने लगा, लाश मुर्दा लोगों की होती है, माना अभी जिंदा है इसलिए नहीं मिली, क्योंकि वो जिंदा है वे लोग आगे पीछे बाहर निकल गए होंगे। आदित्य जल्दी से फोन करता है, नदी में तलाश करने के लिए बहुत बड़ी टीम बुलाता है, वो पूरा एरिया आसपास के गांव तक नहीं छोड़ता। उसे लगता है कि वे लोग शायद उनको शायद किसी ने निकाल लिया होगा नदी से।